नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्र आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासी संकल्प लें तो भारत 2047 तक विकसित बनकर रहेगा। श्री मोदी ने कहा, राष्ट्र को सशक्त करने में अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अगले 5 वर्ष में मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 103 कर्मियों को वीरता पुरस्कार देने की स्वीकृति दी। देश के 3 और स्थानों को रामसर घोषित किए जाने के साथ ही इन स्थलों की संख्या बढ़कर 85 हुई और कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट की अपील ओलंपिक अदालत ने खारिज की। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री राजघाट गए और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उन जवानों के बलिदानों को याद किया जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्होंने कहा कि आज शुभ घड़ी है जब हम देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों और अपना जीवन समर्पित करने वाले आजादी के दीवानों को नमन कर रहे हैं।
आज वो शुभ घड़ी है देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है।
श्री मोदी ने कहा कि आजादी के लिए करोड़ों देशवासियों ने देशभक्ति का परिचय दिया। वंदे मातरम के नारे के साथ आजादी का सपना साकार करने के लिए लड़े और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को परास्त किया।
140 करोड़ मेरे परिवारजन कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। इनमें भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने, पारंपरिक औषधि और स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में विकसित देश बनने, देश को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सुझाव शामिल है।
भारत की जो पारंपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हमारी औषधि है, दुनिया जब आज होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की पारंपरिक औषधियां ऑल वेलनेस हब के रूप में भारत को विकसित करना चाहिए। भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहिए।
श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों ने मीडिया को ग्लोबल बनाने और प्रौद्योगिकी के विकास के भी सुझाव दिए हैं।
2047 विकसित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए सुझाव दिया, कुछ लोगों ने भारत के हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए, कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने इस वर्ष प्राकृतिक आपदा के कारण अपने परिजन खोने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निराशा को आशा में बदला और बड़े सुधारों को जमीन पर उतारा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधारों की प्रतिबद्धता मजबूरी नहीं बल्कि देश की मजबूती के लिए है। श्री मोदी ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह से 10 साल में 10 करोड़ बहनें जुड़ गई हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं।
हमें गर्व हो रहा है कि हमारे सामान्य परिवार की गांव की 10 करोड़ महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। और जब महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, तब परिवार की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बनती हैं, एक बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन की गारंटी लेकर के आती है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को बांध कर रखा गया था, लेकिन हमने अंतरिक्ष क्षेत्र को सभी के लिए पूरी तरह खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जब नीति और नियति सही होती है तो निश्चय ही देश का विकास होता है।
हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किए हैं। जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांध के रखा था उसे हमने खोल दिया है। आज सैकड़ों स्टार्टअप स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं। वाइब्रेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं। आज प्राइवेट सैटेलाइट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में सदियों पुरानी नालंदा भावना को जागृत करना होगा और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। नई शिक्षा नीति 2020 में भाषा के कारण प्रतिभा के लिए बाधा न आए इसके प्रयास किए गए हैं। इस नीति के अनुसार हर गरीब का सपना पूरा हो सकेगा। श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के लिए हमारे देश के युवा विदेशों में जा रहे हैं, उनकी शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इनकी सुविधा के लिए 1,00,000 मेडिकल सीट बढ़ाई गई हैं और अगले 5 वर्ष में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें तैयार की जाएंगी।
करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार के कारण देश में रोष है। महिलाओं के साथ अपराधों की जल्द से जल्द जांच और दोषियों को जल्द सजा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश की घटनाओं पर पड़ोसी देश के नाते भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। भारत वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। सरकार बांग्लादेश की विकास यात्रा में सहभागी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी नए संकल्प, नए विश्वास और नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने कहा कि समाज की मनोरचना बदलाव का कारण बनती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जंग छेड़ी है, इससे हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा राष्ट्र की प्रतिष्ठा से बड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। देश को इनसे मुक्ति पानी होगी। श्री मोदी ने कहा कि जनता ने जो दायित्व दिया है उसके लिए जी जान से काम करूंगा और कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। पंजाब में आज स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना के टैंक T-55 को गुरदासपुर शहर में एक स्मारक पर स्थापित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 103 कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति ने विभिन्न सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मरणोपरांत आर्मी डॉग कैंट सहित 39 मेंशन डिस्पैच पुरस्कारों की भी मंजूरी दी। देश के 3 और स्थानों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इनमें तमिलनाडु के नांजरायन और काजुवेली पक्षी विहार तथा मध्य प्रदेश का तवा जलाशय शामिल है। इसके साथ ही देश में रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कदम प्रकृति के साथ संतुलन बिठाने पर जोर देने की प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। टीम ने कल कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उस सेमिनार हॉल की जांच की जहां महिला डॉक्टर के साथ ये वारदात हुई थी। सीबीआई ने पूरी जांच की वीडियोग्राफी की। जांच टीम में एजेंसी के कोलकाता और दिल्ली कार्यालय के अधिकारी तथा फोरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल थे। महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में पश्चिम बंगाल के कई प्रमुख नगरों और कोलकाता में कल रात महिलाओं ने प्रदर्शन किया। वकीलों के अखिल भारतीय संगठन ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट देश की आर्थिक प्रगति में व्यवधान पहुंचाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। संगठन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि इस रिपोर्ट के मूल प्रयोजन और प्रभाव की व्यापक जांच की जानी चाहिए। संगठन ने दावा किया है कि रिपोर्ट भारत विरोधियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है और एक ऐसे समय में जारी की गई है जब देश में आर्थिक प्रगति और स्थिरता का माहौल है। श्रीलंकाई जल क्षेत्र में कथित रूप से अवैध तरीके से मछली पकड़ने के दौरान श्रीलंका की नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए 17 भारतीय मछुआरों को कल भारत वापस भेज दिया गया। भारतीय दूतावास ने ये जानकारी दी। ये घटना 21 भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद हुई, जिन्हें श्रीलंका की नौसेना ने गिरफ्तार किया था और 2 अगस्त को कोलंबो से चेन्नई वापस भेज दिया। पहले अगस्त को श्रीलंका के नौसैनिक जहाज से टक्कर होने के बाद एक भारतीय मछुआरा मारा गया था और एक अन्य मछुआरा लापता है। पेरिस ओलंपिक से महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के विरुद्ध खेल पंचायत न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद संयुक्त रजत पदक प्राप्त करने की उनकी आशा समाप्त हो गई है। इस मामले की सुनवाई समाप्त होने के कुछ दिनों बाद खेल पंचायत न्यायालय के एडहॉक विभाग ने उनकी याचिका खारिज कर दी। विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक की फाइनल स्पर्धा के दिन 50 किलोग्राम भार वर्ग से उनका वजन 100 ग्राम अधिक होने के कारण अयोग्य करार दे दिया गया था, जिसके बाद फोगाट ने संयुक्त रजत पदक के लिए खेल पंचायत न्यायालय का रुख किया था। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर सृजेश के सम्मान में हॉकी इंडिया ने जर्सी नंबर 16 किसी और को आवंटित न करने का निर्णय लिया है। हॉकी इंडिया ने एक बयान में सृजेश को आधुनिक भारतीय हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताया। सृजेश ने पेरिस ओलंपिक की सफलता के बाद हॉकी से संन्यास की घोषणा की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स को लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है। इस वायरल संक्रमण की शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी, जो बाद में पड़ोसी देशों बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा में फैल गई। एमपॉक्स संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलने वाला रोग है। कुछ मामलों में ये जानलेवा भी हो सकता है। एमपॉक्स पीड़ित व्यक्ति में बुखार और फुंसी की समस्या होती है। प्रसार भारती ने मीडिया संगठनों को सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीबी शब्द सेवा शुरू की है। मीडिया संगठन मार्च 2025 तक इसका उपयोग निःशुल्क कर सकेंगे। इसके लिए इच्छुक संगठन shabd.prasarbharati.org/register पर पंजीकरण करा सकते हैं। पीबी शब्द का उद्देश्य मीडिया संगठनों को देश की प्रमुख भाषाओं में देशभर की ताजा तरीन खबरें उपलब्ध कराना है। इनमें वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और फोटो शामिल हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए देश के दक्षिणी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस महीने की 18 तारीख तक केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक और रायलसीमा में बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने अगले 6 दिन के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी भारत में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद कनकलता। आज के लगभग सभी अखबारों ने 78वां स्वाधीनता दिवस समारोह की शुभकामनाएं पहले पन्ने पर दी हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह के शहीद होने की खबर नवभारत टाइम्स, वीर अर्जुन, जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर लिखता है, कैप्टन शहीद, एक आतंकी को मार गिराया, 2 साल में 10 अफसर शहीद, इनमें 4 कैप्टन। कथित आबकारी घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत न मिलने की खबर नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित अनेक अखबारों में है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 23 अगस्त को होगी सुनवाई, सीबीआई को नोटिस। मुद्रास्फीति 3 माह के निचले स्तर पर, हिंदुस्तान के बिजनेस पेज पर है। डेंगू टीके के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू, जनसत्ता में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 10,335 लोगों पर परीक्षण। दैनिक जागरण ने कोलकाता की डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ आधी रात कोलकाता की सड़कों पर उतरी नारी शक्ति की तस्वीर पहले पन्ने पर दी है। विनेश फोगाट की अपील खेल पंचायत द्वारा अस्वीकार किए जाने की खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान लिखता है, विनेश को नहीं मिलेगा पदक। दैनिक ट्रिब्यून ने हॉकी इंडिया के दिग्गज गोलकीपर पीआर सृजेश के सम्मान में 16 नंबर जर्सी को सीनियर टीम से रिटायर करने की घोषणा की खबर दी है। पत्र लिखता है, हॉकी इंडिया ने सृजेश को जूनियर नेशनल टीम का बनाया कोच।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासी संकल्प लें तो भारत 2047 तक विकसित बनकर रहेगा। श्री मोदी ने कहा, राष्ट्र को सशक्त करने में अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अगले 5 वर्ष में मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 103 कर्मियों को वीरता पुरस्कार देने की स्वीकृति दी। देश के 3 और स्थानों को रामसर घोषित किए जाने के साथ ही इन स्थलों की संख्या बढ़कर 85 हुई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।